गुण भजत जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। वैष्णवीस माताजीस श्री रजसोऽसुरान् जय काले प्रसिद्धि के समय में तू निसंदेह सत्वस्य सतो गुण का देव देवताओं ऋषीन तथा ऋषियों को रजसह रजो गुण का असुरान असुरों को तमसह तमो गुण का यक्ष रक्षांसी यक्षों तथा राक्षसों को तत्काल अनुगुण विशेष अवसर के अनुकूल अभजत अपनाया। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब सतोगुण प्रधान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गण के बल पर समुन्नति करते हैं जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुर गण फूलते फलते हैं और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तात्पर्य, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। बद्ध जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ रहता है, किंतु किसी की विजय तथा हानि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के फल हैं। इसमें भगवान पक्षपात नहीं बरतते। बड़े ध्यान की बात है, बद्ध जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ रहता है, किंतु किसी की विजय तथा हानि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के फल हैं, भगवान के पक्षपात का नहीं। श्रील जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में पुष्ट करते हैं, सत्वादयो न संतिश यत्र च प्राकृता गुणा सशुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु लादिनी संदिनी संवित् त्वयैका सर्वसंस्थितौ हियादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते। भागवत संदर्भ के इस कथन के अनुसार भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे रहते हैं और इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। यही गुण जीव में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि वह प्रकृति द्वारा बद्ध है, अतएव भगवान के लादिनी शक्ति भी बद्ध जीव के लिए कष्टकारक होती है। भौतिक जगत में बद्ध जीव द्वारा भोगे गए सुख के साथ साथ अनेक कष्ट आते हैं। उदाहरणार्थ हमने दो महायुद्ध देखे हैं, इंग्लिश इज वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध देखे हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित थे और इसमें दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। जर्मनी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जिससे वे विनष्ट हो जाएं, किंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर सही मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए, किंतु वस्तुतः उनमें से कोई विजयी नहीं हुआ। अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति प्रकृति के विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है और जब विविध गुण प्रधान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, इसकी पुष्टि भी भगवद्गीता 14 अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक में भी हुई है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विविधम सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। तो इसमें तीनों गुणों का, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के क्या प्रभाव होते हैं वो बताया गया इन तीनों श्लोक के अंदर। सत्वगुण के प्राकट्यों का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हों। हे भारत श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, अदम्य इच्छा, लालसा तथा अतीव उद्योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो उन्मत्तता, मोह, जड़ता तथा अंधकार प्रकट होते हैं। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं। वे निष्पक्ष हैं, वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें हाथ नहीं लगाते। प्रकृति के गुण एक साथ कार्यशील नहीं होते, इन गुणों की अन्योन्य क्रियाएं ऋतु परिवर्तनों की भांति हैं। कभी रजोगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में और कभी कभी सत्वगुण में। सामान्यतः देवताओं में सत्वगुण पाया जाता है, अतएव जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है क्योंकि उनमें सत्वगुण का प्राधान्य रहता है, किंतु यह भगवान का पक्षपात नहीं है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का प्रातःकाल श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। आप में से शायद काफी सारे भक्त ये आशा कर रहे थे कि जुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आज का भागवत कक्षा देंगे, लेकिन किसी कारण से महाराज नहीं आए, तो उसके लिए आपको थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी, लेकिन आप मेरे को सहन कर सकते हैं कुछ समय तक। और महाराज का और आप सब भक्तों का और विशेषकर वरिष्ठ भक्तों का यह आशीर्वाद लेकर के इस श्लोक पर चर्चा करने थोड़ा प्रयास करेंगे, विशेषकर तीनों गुणों के प्रभाव के बारे में। प्रसंग ये है कि पिछला छठा स्कंद अभी समाप्त हुआ है, और वहां पे देखते हैं कि भगवान बारंबार अपने भक्तों का ऐसा प्रतीत होता है कि पक्ष ले रहे हैं, और इसीलिए महाराज परीक्षित हम सबके के शुद्धिकरण के लिए और इस संशय को दूर करने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान इस प्रकार से पक्षपात करते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। और इसी श्लोक से जो इस स्कंद की प्रारंभ होता है वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हरेक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा। सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्य के प्रति शत्रुभाव रखेगा। कृष्ण गीता में भी कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति नमे प्रियः, कि मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन देखने में तो लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं इस प्रश्न की प्रशंसा करते हैं और फिर उत्तर देना शुरू करते हैं। तो इस उत्तर का ये तीसरा श्लोक है। पहला श्लोक इस भक्ति रसामृत महाराज ने लिया था, जिसमें उन्होंने निर्गुण शब्द की व्याख्या की थी कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि भगवान के कोई गुण नहीं है, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। और सुखदेव गोस्वामी पहला उत्तर दे रहे हैं यहाँ आगे कि भगवान को ये तीनों गुण जो है छू नहीं पाते। और आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी खुलासा कर रहे हैं कि ये तीनों गुणों के प्रभाव से बद्ध जीव किस किस प्रकार के कार्य करते हैं और भगवान इनसे परे हैं। तो बता रहे हैं जय काले तु सत्वस्य, अर्थात जब सत्वगुण प्रधान होता है तो कौन जो है किसके बल बढ़ता है, देवर्षीन देवताओं और ऋषियों का। जय काले तु रजसो सुरान, और जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो असुरान असुरगण जो है फलते फूलते हैं। जय काले तु तमसो यक्ष रक्षांसी, जब तमोगुण का प्रधानता होती है तो यक्ष और जो है राक्षस वो समृद्धि पाते हैं। यक्ष रक्षांसी तमसो तत्कालानु गुणो अभजत। और इसमें लिख रहे हैं कि ये जो तीनों गुण होते हैं ये परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। क्यों? भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं और इसीलिए इन तीनों गुणों के फलों को वो पुष्ट करते हैं। इंग्लिश सेज The supreme personality of Godhead is present in everyone's heart, fostering the reactions of sattva-guna, rajo-guna and tamo-guna. अब प्रभुपद तात्पर्य प्रारंभ करते हैं, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। थोड़ा सा इसी बात में खुलासा करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद प्रभुपद दो मुख्य पॉइंट इस तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं और इसके अलावा तो उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इस तीन मुख्य पॉइंट इस श्लोक के अंदर प्रभुपद कुल बता रहे हैं। पहला तो ये है कि भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, प्रकृति उन्हें तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से बांध के रखी होती है, लेकिन उस प्रकृति के पीछे कौन है, भगवान है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो अब आप बोलेंगे इसका मतलब भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है, ठीक बात है। जय श्री श्री राधिका भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरताई श्रील प्रभुपाद की जय। तो अल्टीमेटली भगवान किसी को अच्छा या बुरा फल दे रहे हैं तो पक्षपात तो कर ही रहे हैं? नहीं, भगवान सतोगुण रजोगुण या तमोगुण का फल देते हैं, लेकिन उस सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में कार्य करना जीव की इच्छा अनुसार है। तो भगवान इसमें पक्षपात नहीं करते। और उसके बाद में प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं क्या कि हमने वर्ल्ड वॉर में देखा है कि जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हुआ। तो दोनों ही पक्ष जो है ऑन पेपर हो सकता है जो है इंग्लैंड आई थिंक देवर विक्टोरियस द कंट्रीज फेव इन द ब्रिटिश साइज, वो जीत गए थे, लेकिन वास्तविकता दोनों ही विनष्ट हुए है कि नहीं। और प्रभुपाद जिसको खुलासा भी एक और बुक में भी करते हैं कि जब ये विश्व युद्ध हो रहा था ब्रिटेन और जर्मनी के अंदर, तो ब्रिटेन के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, या जीसस क्राइस्ट से विश्व सब ईसाई हैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ जीसस यू नो लेट द ब्रिटिश बी विक्टोरियस। और सब उन्हें घर वाले जो है प्रार्थना कर रहे थे कि जो हमारे ब्रिटेन के लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जो हमारे घर से सोल्जर्स गए हैं, सैनिक लोग गए हैं, उनकी रक्षा हो और वो विजयी हो। और सेम प्रार्थना जर्मनी के लोग भी कर रहे थे है कि नहीं, कि भगवान जो है हमारे जो देश के लोग हैं वो विजयी, उनकी रक्षा हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो कंफ्यूज हो गए होंगे किसकी मदद करें, है कि नहीं, ब्रिटेन वालों की या जर्मनी वालों की, दोनों ही इक्वल प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, दोनों ही विनष्ट हुए। ऑन पेपर हो सकता है कोई जीता हो कोई हारा हो, लेकिन वास्तविकता में तो दोनों का ही जो है नुकसान हुआ। तो ये एक तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ये युद्ध हुए, लेकिन भगवान ने कोई पक्षपात नहीं बरता उसके अंदर, है कि नहीं। फिर दूसरा जो इसके अंदर एक पॉइंट है वो इन तीनों गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर, ये तीन श्लोक कोट किए 14वें अध्याय से। गीता का पूरा अध्याय का एक नाम है प्रकृति के तीन गुण, लेकिन पूरा एक भगवान ने अध्याय बोला है इन तीनों गुणों के ऊपर। और इसके बाद एक अंत में जो प्रभुपाद कंक्लूड करते हुए बोल रहे हैं, प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं, वे निष्पक्ष हैं, वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं, ही सुपरवाइजेस द सक्सेस एंड डिफीट, किंतु उसमें हाथ नहीं लगाते, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वो सुपरवाइज करते होंगे लेकिन उसमें इंटरफेयर नहीं करते। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकाराभिमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। बता रहे हैं श्लोक के अंदर, जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जो जीवात्मा अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है इस संसार का जो है कि, लेकिन वास्तविकता में वो जानता नहीं कि ये सारे कार्य किसके द्वारा कराए जा रहे हैं, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा कराए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, कई बार कोट करते थे एक ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स को, आपने शायद नाम सुना हो उन्हें। प्रभुपाद उनके बारे में यही कहते थे, ही बिलीव्ड इन सोल, उनको भगवान के बारे में पता नहीं था चाहे, लेकिन वो आत्मा के बारे में उनको ज्ञान था, सो इन दैट रिलेशन ही वाज सेल्फ रियलाइज्ड। तो ये सोक्रेट्स जो है बहुत ये आत्मा के बारे में बहुत जानकार थे। तो एक और हर शाम को वो बैठ करके अपने मित्रों के साथ जो है चर्चा किया करते थे, कुछ आध्यात्मिक चर्चा या फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया करते थे। तो और उनकी पत्नी थोड़े जो है गुस्से वाली थी, तो एक दिन वैसे चर्चा कर रहे थे जब बैठ करके, तो उनकी पत्नी जो है अंदर से बहुत चिल्लाने लगी कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो ऐसे करके। तो सभी तो सोक्रेट्स तो जानते थे तो शांत से बैठे रहे शांति से, लेकिन सब दोस्त थोड़े से उनके जो मित्र थे वो थोड़े परेशान हो गए कि कुछ शायद हमने गलत कर दिया आकर के या कुछ गड़बड़ है। तो सोक्रेट्स ने बोला चलो हम पार्क में चलते हैं, वहाँ बैठ के चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सब पार्क में निकले और जैसे ही घर के बाहर निकले तो ऊपर से क्या बरसा, पूरा एक बाल्टी पानी सोक्रेट्स के ऊपर। सब दोस्तों ने ऊपर देखा तो देख रहे हैं कि उनकी पत्नी ने ऊपर से पानी फेंक दिया। तो इतना गुस्सा थी वो कि उन्होंने उनका पानी फेंक दिया। सोक्रेट्स क्या बोले, बिल्कुल मुस्कुराते हुए बोले, पहले जो है गर्जना हो रही थी अब बारिश हो रही है कि नहीं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव जो जानता हो इस बारे में, तो वो तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं, हम सब भी अधिकांशतः प्रकृति के कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण के प्राधान्य में के अधीन होते हैं। और इसीलिए श्लोक में बता रहे हैं, जब सत्वगुण प्रधान होता है तो ऋषि देवता गण बल प्राप्त करते हैं, जब रजोगुण तो असुर, और जब तमोगुण तो रक्ष और राक्षस। तो ये तीनों गुण हैं क्या? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसी प्रकार ये गाड़ी के तीन गियर के समान हैं, है कि नहीं? कभी आप फर्स्ट गियर न्यूट्रल पे या सेकंड गियर इस पर चलाते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसे चलता है, कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, और कभी तमोगुण के अंदर, है कि नहीं? और इनके कॉम्बिनेशंस के अंदर। और ये कॉम्बिनेशन क्यों भगवान ने बनाए हैं ऐसे एक्चुअली? तो इनका कॉम्बिनेशन जो है ये इसलिए है क्योंकि बद्ध जीवों की अनेकों अनेक इच्छाएं हैं, है कि नहीं? तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये तीन गुण बनाए, और फिर इनके मिक्सचर्स जो है, इनके कॉम्बिनेशंस, उसके द्वारा अलग अलग जीवों की अलग अलग इच्छाएं कि भगवान पूर्ति कर सकते हैं। और जब उनकी पूर्ति होती है, धीरे धीरे वो आध्यात्मिक भगवधाम जा सकें। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी और प्रकृति के द्वारा जो है इन तीन गुणों की रचना की। और ये तीन गुण, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, गुण का एक अर्थ होता है वो होता है रस्सी भी होता है। एक तो होता है क्वालिटी, जैसे निर्गुण हम बोल रहे हैं, वैसे ही एक अर्थ होता है रस्सी। तो भगवद गीता के अंदर आपने पिक्चर भी देखी होगी कि जो है जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन, ये आप देख सकते हैं, और बाद में जाके ध्यानपूर्वक देख सकते हैं इस पिक्चर को, कि तीन प्रकार के इन गुणों से वो बंधा हुआ है, तीन प्रकार की रस्सियों से एक प्रकार से। तो कभी सत्वगुण, तो कभी रजोगुण, और कभी तमोगुण के प्रभाव में रहता है। और जैसे कोई भी बड़ी रस्सी हो तो क्या होता है, वो आप पहले धागे लेंगे, दो तीन धागे लेंगे, उनको जोड़ेंगे, फिर थोड़ा और मोटा रस्सी बनेगी, है कि नहीं? फिर ऐसे तो उसी प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है तीनों के प्रभाव से क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इस प्रकार से उन गुणों के प्रभाव में आके जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत के अंदर वो जकड़ा जाता है। और इसका प्रभाव हर जीव के अंदर देख सकते हैं, अलग अलग जीव, कोई भी दो जीव समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते, अलग अलग जीव अपने अपने गुणों के प्रभाव से अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मंदिर का उदाहरण तो नहीं देंगे, और भक्त सिनेमा का उदाहरण मान लीजिए, आप किसी बिल्डिंग के अंदर है, हम सब वहां पे हैं, और वहां आग लग गई मान लीजिए अचानक से, या आग भी नहीं लगी, वहां पे जो है फायर अलार्म जो है बजना शुरू हो गया कि आग लगने की घोषणा हो गई है, तो क्या होगा? जो लोग रजोगुण के प्रभाव में है उनकी कैसे प्रतिक्रिया होगी? वो तुरंत भागना शुरू कर देंगे, घबराहट हो जाएगी, भागो भागो, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे भगदड़ सी मच जाएगी जो रजोगुण के प्रभाव में होंगे। जो लोग तमोगुण के प्रभाव में होंगे उनका क्या प्रतिक्रिया होगी? वो वही बेहोश हो जाएंगे, है कि नहीं? वो डर जाएंगे, बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, ऐसा है कि नहीं? जो सत्वगुण के प्रभाव में होंगे लोग, वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे क्या रास्ता है यहाँ पे, कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स है, कहाँ से निकास का रास्ता है, और वो भगदड़ को रोकने का प्रयास करेंगे बच, ताकि सब बच सकें और कम से कम हानि हो, है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं अलग अलग गुण के अंदर जो प्रभाव होता है उसके प्रभाव में आके अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया होती है एक ही कार्य के प्रति, चाहे वो एक ही कार्य हो, एक ही स्थिति हो, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है सत्वगुण का लक्षण क्या है, इस श्लोक के अंदर ही बताया है कि सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, कि शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित होते हैं, अर्थात व्यक्ति बहुत संतुष्ट होता है, शांत होता है, खुश होता है। कोई रजोगुण के प्रभाव में होता है तो व्यक्ति का क्या लक्षण होता है, वो इंद्र तृप्ति के पीछे बहुत एक्टिव होता है, सुबह से लेकर रात तक जो है वो या तो यौन जीवन या धन या विशेषकर यश के प्रति उसकी बहुत रुचि होती है और बहुत मेहनत करता है वो। जैसे एक बारी एक व्यक्ति था, तो वो अचानक से मान लीजिए मंदिर में आया और बोला ये पंखा बंद करो, ये पंखा बंद करो, ये पंखा बंद करो। सबको लगा जाने क्या हो गया, पंखा गिरने वाला है, दीवार टूटने वाली है, करंट आ रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने बंद किया सबने पंखा, और क्या बोलते हैं, देखो इस पंखे पे किसका नाम लिखा हुआ है, मेरे पिताजी ने दान दिया था। तो ये रजोगुण का प्रभाव है कि नहीं, कि उसके जो है पूजा प्रतिष्ठा की बहुत अधिक इच्छा होती है। और तमोगुण के अंदर व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल असहाय, निसहाय होता है, पड़ा रहता है, बिल्कुल खाली डे ड्रीमिंग करता रहता है बस, है ना? एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, 20 साल बाद ऐसा होगा, और जब आंखें खोलता है देखा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और वही स्थिति है उसकी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो इग्नोरेंस है, ये तमोगुण का लक्षण है। और कृष्ण गीता में हम सबको ऑप्शन दे रहे हैं, दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, कि जो जीव है वो क्या है वास्तविकता में, वो तटस्था शक्ति है भगवान की ना, वो जो है वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में है नहीं अपनी ओरिजिनल पोजिशन के अंदर, लेकिन जीव तटस्था शक्ति है। तट अर्थात बैंक, एक नदी का या समुद्र का जैसे बैंक होता है तो वो कभी गीला होता है कभी सूखा होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो जीव होता है उसके पास ये इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि या तो वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में जाए या फिर बहिरंगा शक्ति के। उसका स्वभाव है किसी न किसी के शरण ग्रहण करना, सेवा करना। तो हम सब या तो कृष्ण की सेवा करेंगे या फिर कृष्ण की शक्ति माया देवी की सेवा करेंगे, ये स्वाभाविक है, या तो कृष्ण या माया, ये हमारे पास इच्छा शक्ति है। जब माया की सेवा करते हैं शरण ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हम तीनों गुणों के प्रभाव में और अधिक बंध जाते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान ने सृष्टि की रचना भी कैसे की, जैसे कोई भी पेंटर होते हैं, अगर मान लीजिए हम आपके सामने तीन जो हैं ये पोस्टर कलर्स की बॉटल ले आते हैं, येलो रेड और ब्लू, या पूरा का पूरा घड़ा भी ले आते हैं कलर्स का, उसको देख के हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली, कोई इमोशन नहीं जागने वाले हमारे अंदर, है कि नहीं। एक हम पीले रंग का घड़ा ले आए, एक लाल रंग का और एक नीले रंग का, तो पीला रंग किसको किसको जो, लेकिन वही रंग यदि कोई पेंटर लेता है और उन तीनों कलर से बहुत सुंदर जो है पेंटिंग बनाता है, कोई लैंडस्केप बनाता है या किसी का चित्र बनाता है या कोई गाड़ी बनाते हैं, तो क्या होगा, हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं जागृत होना शुरू हो जाएंगी, है कि नहीं। कलर्स वही हैं लेकिन जब उनको किसी उनके किसी मिश्रण से, एक कॉम्बिनेशन से किसी व्यक्ति ने उसको एक आकार दिया, एक रूप दिया, तो हमारे मन के अंदर कुछ भावनाएं जागृत हो, उसका हम पे अलग प्रभाव पड़ता है कि नहीं। कोई भी हम चित्र देखेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और वही हम उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कलर्स हैं, रंगों को देखेंगे तो हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है कि नहीं। वैसे ही जो है भगवान और ब्रह्मा जी और माया देवी ने इस पूरे भौतिक जगत की रचना ऐसे की है, इन तीनों गुणों के प्रभाव से। ऐसे भी तीन गुणों तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन तीनों गुणों का मिश्रण जब होता है तो अनेकों अनेकों प्रकार की योनियां उससे उत्पन्न होती हैं, और हम सब इसी से प्रभावित रहते हैं जैसे उन तीनों गुणों का मिश्रण, तीनों रंगों का मिश्रण है, है कि नहीं। और ये बहुत ही भौतिक जगत का एक्सपर्ट डिजाइन किया है। प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं कि भगवान की सृष्टि कैसे है, भगवान की सृष्टि बहुत विचित्र है, उनका गुणगान करते हुए श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं प्रथम स्कंद के अंदर कि देखिए भगवान ने क्या किया, एक नर बनाया और एक नारी बनाया। अब भगवान की छुट्टी, अभी आगे सृष्टि नहीं करते, है कि नहीं। एक पुरुष और एक स्त्री है, आगे का सृष्टि अपने आप होता रहता है, इस प्रकार से भगवान ने बना दिया। क्या आपने कभी देखा है ये ओडोमॉस कौन सी कंपनी ने बनाया है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने, अभी डाबर इंडिया वाले जो है एक शी ओडोमॉस बनाए एक ही ओडोमॉस बनाए और बाद में सारे ओडोमॉस अपने आप जो है निकलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, है कि नहीं। कि ये टाइट ये जो है कैस टाइटन या कैसियो की घड़ी हो और एक पुरुष घड़ी बनाया एक स्त्री घड़ी बनाया और अन्य जितनी घड़ी चाहिए अपने आप आती रहेंगी, उनका जो है उत्पादन होता जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसी सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए मनुष्यों को बार बार उसी मशीन से उन्हीं व्यक्तियों को वही काम करना पड़ता है, कि नहीं। लेकिन भगवान की सृष्टि ऐसी है, देखिए उन्होंने एक पुरुष का शरीर बनाया, यंत्र बनाया, एक स्त्री का यंत्र बनाया, और अब सृष्टि अपने आप आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कैसे बढ़ती है, तीनों गुणों के प्रभाव से। देखेंगे अलग अलग योनियां जो है, अलग अलग जीव अलग अलग गुणों के प्रभाव में कैसे होते हैं। हमने एक उदाहरण दिया कि अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, और सृष्टि की सारी योनियों को हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। मनुष्य में 400,000 योनियां होती हैं, वो भी उनके गुणों के, उनकी चेतना के ऊपर आधारित होती है। तो जैसे अगर जानवरों की हम तुलना देखेंगे तो जो हाथी होता है उसमें कौन सा गुण प्राधान्य होता है, जनरली वो सतोगुण का प्रतीक उसको बोला जाता है। क्यों, शांत होता है जनरली वो, और मेहनती होता है कि नहीं, जनरली, और किसी को हिंसा ज्यादा नहीं पहुंचाता। रजोगुण का प्रतीक कौन है, शेर, सिंह, कुछ लोग बंदर भी बोलते हैं, और लेकिन सिंह का क्यों, क्योंकि बहुत क्रूर होता है वो, दूसरों का मांस खाता है, उनको पे अत्याचार करता है, और जो है हमेशा उसके मुंह से जो है लार टपकती रहती है, वो इतना रेस्टलेस होता है, वो इतना जो है तो बहुत ही रजोगुण के प्रभाव में होता है। जैसे कभी कभी हमारा प्रत्यक्ष भी अनुभव है, कई भक्त भक्ति हैं, लेकिन वो जब उनको बाहर काम कंपनी में 12-12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ता था, एक बार बता रहे थे हमको कि प्रभु जी वास्तविकता हमारे मुंह से झाग निकल रहा था, है कि नहीं। दैट इज रजोगुण। और तमोगुण के प्रतीक कौन है? शेर और हाथी, और दूसरा सियार। सियार ऑफकोर्स हर जानवर के आप कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन क्यों? सियार बहुत ही चालाक होता है और बहुत ही आलसी होता है। आलसी कैसे? आप दिन में देखेंगे सियार आपको दिखेगा ही नहीं, रात्रि होती है तो चिल्लाना रंभाना शुरू करते हैं, कि नहीं? दे स्टार्ट ब्रेइंग इन द नाइट, जैसे ही रात होती है तो सियार। उसके बाद सियार कभी जो है वो नहीं करता, शिकार नहीं करता। वो क्या करता है? दूसरों ने शिकार किया होता है, उनका जो चिष्ट होता है वो वही खाता है बस, इतना आलस मतलब, है ना। तमोगुण का ये प्रभाव है कि कौन मेहनत करे शिकार करने की, है ना। तो सियार जो है तमोगुण का प्रतीक है इस प्रकार से जानवरों के अंदर। और ये तीनों गुणों के प्रभाव से जो जीवात्मा होता है एक बहुत ही सुरक्षित कैदी बन जाता है। इस भौतिक जगत की तुलना एक जेल से की गई है, और हम सब जो बद्ध जीव हैं उनकी तुलना किससे की गई है? एक कैदी से की गई है। लेकिन इस जेल के अंदर आश्चर्य की बात है, कोई दीवारें नहीं है, कोई बेड़ियां नहीं है। हम में से किसी को हथकड़ियां नहीं लगाई हुई, हम में से किसी को जो है कोई जेल नहीं है यहाँ पे। लेकिन इतनी आश्चर्यजनक जेल है, हम में से कोई यहाँ बाहर नहीं जाना चाहता। हमको यहाँ इस जेल खाने के अंदर बहुत सुरक्षित महसूस होता है। ये इस तीनों गुणों की भगवान की प्रकृति की विशेष रचना है कि नहीं। तो इस दिनों राधा रमान ने लेक्चर दिया था, और भागवतम में आता है ये बेड़ियां क्या है? इंद्र तृप्ति की, इस दुनिया की जो इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं वो बेड़ियां हैं वास्तविकता के अंदर। और वो इतनी अच्छी लगती है कि व्यक्ति जो है इसको छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और भौतिक प्रकृति का गुणों का ये प्रभाव है, देयर इज इनफ प्लेजर इन दिस वर्ल्ड टू कीप अस अटैच टू द पेन। जैसे प्रभुपाद यहां बता रहे हैं जीव गोस्वामी को कोट करते हुए, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जीव जो है वो वास्तविकता में उसके अंदर भगवान के सारे गुण हैं, कि गुणात्मक रूप से वो सेम हैं, मात्रात्मक रूप से अलग होंगे चाहे वह, क्वालिटेटिवली जीव और भगवान क्या है? सेम है। तो यदि भगवान के अंदर ये तीन शक्तियां इलादिनी संधिनी संवेद, तो सेम जीव के अंदर भी है। लेकिन जो बद्ध जीव होता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा बद्ध है, इसीलिए वो इलादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करती है वो भी जीव बद्ध जीव के लिए क्या होती है? कष्टदायक प्रतीत होती है, ठीक है? नहीं, वो शक्ति उसके पास भी है, लेकिन क्योंकि वो बद्ध है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, तो भगवान को आनंद प्रदान करती है लेकिन जीव को कष्ट प्रदान करती है वो। और कैसे? एक बारी एक गांव से एक चूहा जो है वो शहर में आया, उसके उसका एक दोस्त था शहर में रहता था, है कि नहीं, इसी विलेज से आया वो, और उसको उसके दोस्त इनवाइट किया था कि आप शहर में आओ, यहाँ बहुत अच्छा खाने को मिलता है, यू नो, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, कुसीन्स हैं चाइनीज, यू नो, और स्पेनिश इत्यादि इत्यादि। तो वो चूहा मिलने आया अपने दोस्त से, और जो है ये गांव का चूहा जो है इसने बोला शहर के चूहे को कि यू नो मिले दोनों। और फिर जब शाम हुई तो उसने चलो डिनर पर चलते हैं, और फिर एक जगह वो एक टेबल के ऊपर, तो देख करके वो जो गांव का चूहा था वो तो बिल्कुल हैरान रह गया। बासमती चावल, पनीर की सब्जी और सब खा के जो है बिल्कुल वो खा था बड़े मजे से। फिर अचानक से क्या हुआ, जो वहाँ का वेटर होता है वो छड़ी लेके आया और ठक करके उसने बिल्कुल निकट से मारा, तो तुरंत ही वो शहर वाला चूहा तो बिल्कुल, वो तो एक्सपर्ट था, रोज का उसको तजुर्बा था, तो अनुभव था, तो वो भाग गया और एक छेद के छुप गया। और बड़ी मुश्किल से ये जो गांव का चूहा था ये बड़ी मुश्किल से भागा, उसके पास आया, पहुंचा, बोले ये क्या था? बोले ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो रोज का खेल है, रोज ऐसे ही होता है, हमें इतना अच्छा जो है फीस्ट मिलता है, लेकिन बस सावधान रहना पड़ता है कि ये जो मालिक के नौकर हैं, ये जो वेटर्स हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट के मालिक के, ये यहाँ पे आके हमें मारना दें। तो बोले कोई चिंता, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये गांव वाला चूहा बोला कि चिंता की बात नहीं है, अभी थोड़े से जीव के लालच के लिए कभी जान निकल जाएगी, ये चिंता की बात नहीं है क्या, है कि नहीं? बोला मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, वहाँ आराम से खेतों के अंदर घूम सकते हैं हम, कोई मारने नहीं आता, वहाँ थोड़े बहुत टुकड़े मिल जाते हैं धान के, वहाँ शांति से मिल जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो वो गांव का चूहा थोड़ा सतोगुण के प्रभाव में था, लेकिन शहर का चूहा कैसा था? रजोगुण, नित्य तृप्ति के प्रथम गुण, रजोगुण के, है कि नहीं, प्राण जाए पर नित्य तृप्ति ना जाए, है कि नहीं। तो ये तीनों गुणों का जो है प्रभाव है, इस प्रकार से ऐसा है, इफेक्ट की बात है, लाइक दैट। और हमारी इच्छा है हम कृष्ण की सेवा करें चाहे माया देवी की सेवा करें, लेकिन यदि हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में, उसका प्रभाव क्या होता है ये भगवान इस 14वें अध्याय के अंदर बता रहे हैं। आप चाहें तो मेरे पीछे श्लोक धरा सकते हैं, बहुत फेमस श्लोक है गीता का, ये 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ये भगवान इन तीनों गुणों का प्रभाव बताते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तो बोल रहे हैं जो सतोगुणी लोग होते हैं वो कहां जाते हैं? ऊपर के लोकों में जाते हैं। सत्वस्था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। तो रजोगुणी लोग होते हैं इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। और जो तमोगुण में रहते हैं वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। जिन गुणों के प्रभाव में हम हैं वहां जाते हैं। और कृष्ण ये बता रहे जो है, एक अन्य श्लोक आता है, यान्ति देवर्ता देवान पितरन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याचिनोपि माम। कि जो पितरों की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो इसीलिए कृष्ण जो है इस श्लोक में, प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं इसके अंदर, प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं। वे निष्पक्ष हैं, वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें हाथ नहीं लगाते। इंग्लिश में लिख रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड गिव्स द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वेरियस क्वालिटीज बट ही इज इम्पार्शियल। ही सुपरवाइजेज विक्ट्री एंड लॉस बट ही डज नॉट टेक पार्ट इन देम। और हम देखते हैं ये विशेष बात, जब समुद्र मंथन की लीला हुई थी तो भगवान ने क्या किया वहां पे? भगवान सब कुछ एक्चुअली भगवान ही कर रहे थे, क्योंकि देवता दानव तो बिल्कुल हताश हो गए थे। तो जब वासुकी नाग को मंदर पर्वत से क्या बोलते हैं मथनी बनाया और चरनी शुरू किया, मंथन करना शुरू किया, तो वासुकी के मुंह से जो है आग और अनेक फनों से आग और लपटें और धुएं तय निकलने लगे, तो सारे जो दानव थे वो क्या हो गए? उनसे बिल्कुल जो है उनकी शक्ति क्षीण हो गई। और देवता भी जो चरनी करने लगे तो उनकी शक्ति भी क्षीण होने लगी। और जो वासुकी नाग थे उनकी तो हालत ऐसे होने लगी जैसे मान लो मरने वाले हैं अभी। तो भगवान ने देखा ये, तो और मंदर पर्वत डूब रहे थे, तो भगवान ने कूर्म अवतार लेके किया। लेकिन फिर भगवान ने क्या किया, तीनों प्राणियों के अंदर, देवताओं दानवों और असुरों के और नाग के अंदर अलग अलग गुणों का विस्तार किया। उन्होंने देवताओं को कौन सा गुण का प्रधानता दी? सतोगुण की, तो उनकी शक्ति वापस आई। और असुरों को रजोगुण, जैसे वो दिया उनके नाग, कि नहीं नहीं हमें अमृत प्राप्त करना है, अमृत प्राप्त करना है। और वासुकी नाग को तमोगुण, ऐसा है। जैसे ही आई तो चर्निंग जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कृष्णा इज इम्पार्शियल, भगवान जो है निष्पक्ष है, जो जिस गुण के अंदर है, जो जिस गुण चाहता है, जो उसको सहायता करेगी वो गुण उनको प्रदान कर रहे हैं। तो ये बात की पुष्टि होती है इससे। लेकिन जब ऐसे बात करते हैं तो दो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत इस दुनिया के अंदर व्यावहारिक रूप से उत्पन्न होते हैं। अभी मॉडर्न डे सिद्धांत क्या है लोगों का? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, बस, है कि नहीं? इसके आगे और भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, मेहनत करोगे तो आपको परिणाम प्राप्त होगा और मेहनत नहीं करोगे तो परिणाम प्राप्त नहीं होगा। हिंदी में कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, नहीं जगन्नाथ ही जगन्नाथ है, आपका हाथ आपका हाथ है, है कि नहीं? अपना हाथ कैसे जगन्नाथ हो गया बताइए, है कि नहीं? लोगों का कहना है ऐसा। तो इसको बोलते हैं कर्मवाद फिलोसॉफी, सब कुछ आप ही के हाथ में है, है कि नहीं? जैसे माइक टाइसन थे जब, तो आई थिंक 19 या 21 साल के अंदर ही बिकेम द वर्ल्ड्स हैवीवेट चैंपियन। तो उसने बोला माइक टाइसन इज द यंगेस्ट चैंपियन एंड ही विल बी द ओल्डेस्ट चैंपियन, उन्होंने ऐसा ऐलान किया। वो बहुत घमंडी थे, लेकिन 40 साल की उम्र तक आते आते उनको क्या हो गया, नहीं गॉट पार्किंसन डिजीज ना, और उन्होंने बोला नहीं अब मैं नहीं लड़ सकता, ऐसा है। तो ही वॉज नॉट द ओल्डेस्ट चैंपियन, उनके हाथ में नहीं है, ऐसा है। और दूसरा इसका सिद्धांत क्या होता है? दैववाद, प्रभु जी सब कुछ तो भाग्य में लिखा है, जब भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं है कि नहीं, तो हमारे हाथ में है ही क्या, है कि नहीं। ये आलसी लोगों की फिलॉसफी है, जो होना होगा हो जाएगा, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, है ना। और ये सब आलसी लोगों का सिद्धांत है। ऐसे जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जब कोई नुकसान हो जाता है पहले तो काम नहीं करते, बोलते हैं देख लेंगे, हो जाएगा, भगवान है ना, जो भाग्य में है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कैसे हिल सकता हूँ, है कि नहीं। ये उनका सिद्धांत होता है। जब काम बिगड़ जाता है तो बोलते हैं देखो भगवान ने कराया। तो ऐसे ही एक ये उदाहरण पहले भी आपने सुना होगा कई बारी, एक कोर्ट के अंदर एक आदमी को प्रस्तुत किया, एक मुजरिम को, और उसने क्या किया था, मर्डर किया था किसी का। तो सारे जो क्या बोलते हैं विटनेस, गवाह, साक्षी और सारे सबूत थे, जिसे प्रूव हो गया कि इसने मर्डर किया है। तो जज अपना डिसीजन देने वाले थे, न्याय करने वाले थे, उनको सजा, फांसी की सजा देने वाले थे। तो उसने, जज ने पूछा तुम्हें आखिरी कुछ कहना है, तो उसने बोला हाँ, बोले देखो शास्त्रों में लिखा है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मेरे यहाँ से चाकू कैसे हिल गया, अगर आप मेरे को सजा सुनाने वाले हो तो भगवान को भी सजा सुनाओ, है कि सब कुछ सब भगवान के कंट्रोल में है। तो बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, वही भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें सजा सुनाई जाए, है कि नहीं। फिर तुम कह रहे हो भगवान ने मर्डर कराया है, तो वही भगवान मुझसे ही वही काम करा रहे हैं, इसलिए हरे कृष्णा अभी जाओ फांसी पे चढ़ो, है कि नहीं। तो ये आलसी लोगों का सिद्धांत है। लेकिन वास्तविकता के अंदर जो सक्सेस है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडेवर एंड डेस्टिनी बोथ। कैसे, कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्म करना हमारे हाथ में, फल पाना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कई बारी आप देखते हैं माता और पिता दोनों ठीक होते हैं, लेकिन संतान उत्पन्न करने के प्रयास करते हैं, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में नहीं है कि कोई जीवात्मा उनके गर्भ से जो है जन्म ले, है कि नहीं, सच बात है कि नहीं। और तुम देखते हैं उनके हाथ में नहीं है वो, ऐसा करके कोई बोल सकता है कि शायद केवल पुरुष और स्त्री के संपर्क से जो है संतान उत्पन्न होती है। लेकिन बहुत बारी देखते हैं, और भागवत में उदाहरण भी आता है कि कितनी बारी ऐसा होता है कि पुरुष और स्त्री संपर्क करते हैं लेकिन फिर भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? बिकॉज देयर इज अ हायर फोर्स। तो कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स और जो जितने भी, ये सिद्धांत हम सबके लिए इतना लागू है कि यस, प्रयास करना हमारे हाथ में है, जीत यार हमारे हाथ में है ही नहीं बिल्कुल भी, है कि नहीं। हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें पास होना फेल होना ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो सक्सेस मीन्स बोथ एंडेवर एंड डेस्टिनी, ऐसा है। तो लेकिन तीनों गुणों के प्रभाव में आके लोग सोचते हैं, या तो रजोगुण प्रभाव में कहेंगे कि नहीं कर्म सब कुछ है, तमोगुण प्रभाव में कहेंगे दैववाद है, ऐसा करके। सतोगुणी व्यक्ति केवल जान सकता है कि नहीं, मेरे को प्रयास करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है। लेकिन इन गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि हे अर्जुन, क्या करो, आप इन तीनों गुणों से, इन द्वंद्वों से जो है ऊपर उठो, ऐसा है कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और भगवान जगह जगह पे गीता में पुष्टि कर रहे हैं कि मैं इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता, कि ये तीनों गुण मेरे नियंत्रण के अंदर हैं लेकिन मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं जो हूं इन सबके ऊपर हूं, इनका कंट्रोलर हूं। और यही बात सुखदेव गोस्वामी यहां बताने का, उनको बता रहे हैं कि भगवान क्या है, निर्गुण है। ऐसा है कि सुप्रीम लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल। इस जगत में भी हम देखते हैं, आप सब भक्त यहां पे अपनी गाड़ी या बाइक से आए होंगे, और हम सबको जो ट्रैफिक के नियम हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, है कि नहीं। हम उनसे वशीभूत हैं। अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, चालान कट जाएगा हमारा। लेकिन हम देखते हैं, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर आए तो क्या उनके लिए ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, है कि नहीं। जब एक देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए ट्रैफिक नियम बिल्कुल बदल जाते हैं उस दिन, है कि नहीं। तो जब उनके लिए होते हैं, तो जब वो ट्रैफिक के सरकार के नियमों के अधीन नहीं है, तो भगवान जो प्रकृति के गुणों के ऊपर है, क्या वो अधीन इन गुणों से उनको बंधना पड़ेगा, नहीं। लेकिन कृष्ण गीता के अंदर मूर्ख लोगों का के ऊपर शोक प्रकट करते हैं और क्या कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो मेरे स्वरूप को समझ नहीं पाते और मेरे बारे में क्या करते हैं, गलत धारणा, मेरा उपहास करते हैं। 9वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं, अबजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो हमें ये जानना होगा कृष्ण जो है हिज ट्रांसेंडेंटल, भगवान जो है उच्च बताया गया शुद्धम अपाप विद्धम। जिस प्रकार से सूर्य अपनी रोशनी के द्वारा कोई भी गंदगी हो, चाहे मलमूत्र भी हो, उनको क्या करता है, सुखा देता है, या एक प्रकार से बोला जाए वो बोलते हैं पी लेता है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। वैसे ही भगवान जो है इन प्रकृति के गुणों में कभी प्रभावित नहीं होते, चाहे वो इन प्रकृति के गुणों का नियंत्रण करते हों, लेकिन उनसे प्रभावित वो कभी भी नहीं होते। और कृष्ण अर्जुन गीता में ये कह रहे हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि हे कृष्ण आप जो है परम ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं, परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप आदि हैं, अजन्मा हैं, अव्यय हैं, और ऐसे उनका गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन आपको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। किसके लिए संभव है? जो भगवान के इन स्वभाव को समझ पाता है कि भगवान निर्गुण हैं और उस वो ट्रांसेंडेंटल होने का प्रयास करता है, भगवान की शरण ग्रहण करके मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति थे। उस भगवान क्योंकि प्रकृति के ऊपर है, उनकी शरण ग्रहण करके हम क्या हो सकते हैं, इस प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से छूट सकते हैं। तो देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण, समझ सकते हैं। और ये इसीलिए महाराज परीक्षित इस प्रश्न को पूछ रहे हैं ताकि वो भगवान के इन गुणों को जान सकें कि भगवान जो है निर्गुण है, लेकिन फिर भी जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं जानते कि भगवान निर्गुण है, किसी का पक्षपात नहीं करते, वो क्या आरोप करते हैं? जैसे यदि आप में से कोई महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में आपको मालूम है वहां के हीरो कौन है, किन की पूजा करते हैं वहां? नहीं, शिवाजी की तो ठीक है, वो जानते हैं कि एक मराठा रूलर थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग कर्ण की पूजा करते हैं वहां पे, ऐसा है। कर्ण क्यों? क्योंकि वो दानवीर कर्ण थे और कृष्ण छल से उनको जो है मारा। तो लोग जो है भगवान के ऊपर इस पास से बहुत बड़ी आक्षेप करते हैं कि देखो भगवान ने छुपकर बाली का वध किया, देखो सुग्रीव का पक्ष लिया है कि नहीं, कर्ण को मारा पांडवों का पक्ष लिया है कि नहीं, अर्जुन का पक्ष लिया। क्योंकि वास्तविकता में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि कर्ण भीष्म पितामह और तो ये दो ऐसे वॉरियर थे, और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का तो वरदान प्राप्त था कि जब तक वो अपने अस्त्र खुद नहीं छोड़ देंगे कोई नहीं मार सकता, जब तक हाथ में अस्त्र हैं वो अवध्य हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी और कर्ण इतने महारथी थे, उनके पास वो कवच था, तो वो कवच इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण बन के कर लिया। तो भगवान ने सब ऑर्केस्ट्रेट किया, लेकिन जब फाइनल बारी थी तो जब कर्ण के मृत्यु आने वाली थी तो हुआ क्या, उनका जो रथ का पहिया था वो धरती में चला गया है कि नहीं। तो उन्होंने बोला अर्जुन को कि अरे भाई देखो इस समय मेरा रथ का पहिया मेरा जो है पृथ्वी में चला गया है, मैं इसको निकाल देता हूँ, निकालने के बाद युद्ध करना, ये धर्म, ये जो है युद्ध का धर्म है या युद्ध का नियम है। तो अर्जुन भी मान गए कि ठीक बात है भाई, अगर कोई बराबर वाले से कॉम्बैट करना चाहिए युद्ध का नियम है। लेकिन कृष्ण तब बोले, कृष्ण क्या बोले उस समय, जब तुमने लाक्षाग्रह में पांडवों को सोते पांडवों को आग लगाई थी तो क्या वो धर्म था? जब तुमने भरी सभा में तुमने जब द्रौपदी का उल्लास करके बोला था कि पांच पतियों की स्त्री जो है वो पतिव्रता कैसे हो सकती है, तो क्या वो धर्म था? जब दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा अपान किया था, क्या वो धर्म था? जब आप सब सात वीरों ने मिलकर एक अभिमन्यु का वध किया, क्या वो धर्म था? अगर ये सब धर्म था तो आज अर्जुन को भी अपने धर्म का पालन करने दो। और फिर अर्जुन को बोला मारा इनका, लाइक दैट, एंड अर्जुन शॉट हिम डेड कंप्लीट इमीडिएटली। तो लोग जो है कृष्ण पे आक्षेप करते हैं, कृष्ण जो है इस पास से पक्षपात करते हैं। हम देखते हैं मोहिनी मूर्ति जिस प्रकार से उस दिन इन्होंने भक्ति दी दामन वहां से भी क्वेश्चन पूछा था। तो जगह जगह हम देखते हैं, हमें लगेगा कि भगवान जो है भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन नहीं, जो भक्त है वो समझ सकता है कि दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू अचीव कृष्णा। गोपियों ने इस संसार के सारी लोक लज्जा को त्याग कर दिया तो सारे नियमों को पार करा तो भगवान प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपने सभी जो है परिजनों का वध किया जो नैतिक दृष्टि से गलत हो सकता है, बट ही अचीव्ड कृष्णा इन दैट वे, ही डिड इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। बलि महाराज ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया शुक्राचार्य का, नैतिक दृष्टि से तो बहुत गलत है कि नहीं, लेकिन भगवान सिखा रहे असली नैतिकता क्या है। जो है विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया है कि नहीं, अब भगवान राम की शरण गई। अब वास्तव में हिंदी में ऐसा बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, है कि नहीं, एक्चुअली विभीषण का अपमान है ये एक प्रकार से जो है। सो पीपल सपोर्ट रावणा, लोग रावण की पूजा करते हैं और विभीषण की निंदा करते हैं। वो लोग करते हैं जिनको भगवान के तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसा है, क्योंकि भगवान स्वयं निर्गुण है और जो भगवान की सेवा करते हैं वो भी इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। इसीलिए वो उस भौतिक समाज की जो है ज़्यादा परवाह करते नहीं कि यहाँ पे मोरालिटी क्या है, क्या नैतिकता और क्या अनैतिकता है। नैतिकता और अनैतिकता तीनों जो दोनों जो हैं वो इस संसार के ऊपर लागू होती है, ऐसा है। वो भगवान के लोक में नैतिकता अनैतिकता नहीं लागू होती, यू नो वी कॉल इट मोरालिटी एंड सुप्रामंडेन मोरालिटी, ट्रांसेंडल मोरालिटी। जैसे मान लीजिए एक रोड पे लिखा है स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन चोर चोरी करके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा करेगी और बोला देखो 60 किलोमीटर पर आवर आई शुड फॉलो दिस, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, व्हाट इज द रियल मोरालिटी? वो 100 की स्पीड से जाए और उन चोरों को पकड़े, है कि नहीं, सच बात है कि नहीं, दैट इज द सुप्रामंडेन मोरालिटी। तो उसी प्रकार से लोग कई कार्य जो है इस्कॉन की निंदा करते हैं कि आप लोग देखो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ पे आपका लेटेस्ट माइक्रोफोन है, लेटेस्ट आपके गैजेट्स हैं, है कि नहीं, और आप बड़े बड़े वैराग्य की बातें करते हो, है कि नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, सब भगवान का धन है, आप चोरी करके भाग रहे हो, है कि नहीं, भगवान का धन लेके उसका उपभोग कर रहे हो, तो आप चोर हो, तो भक्तों को क्या करना पड़ेगा? उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके तेज स्पीड से भाग के आपको पकड़ना पड़ेगा और उसको छीन करके भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही तो भक्त लोग कर रहे हैं, क्यों? अगर बड़े मंदिर बनाएंगे तो लोग आकर्षित होंगे, हाँ देखो इस्कॉन का मंदिर बड़ा अच्छा है, वहाँ पे यू नो एनिमेट्रॉनिक थिएटर है, वहाँ पे रोबोटिक शो है, लोग भगवान को दर्शन करने थोड़ी आते हैं ज़्यादा, है कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा मंदिर बनाया तो क्या है, वो अभी दिल्ली के 5 टूरिस्ट प्लेस के अंदर है कि नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं और इसी बहाने भगवान से वो जुड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो जिस चीज़ का परित्याग आपको त्याग करना चाहिए वही लोग जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा है कि नहीं। तो इफ somebody इज नॉट अ डिवोटी ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि नैतिकता क्या है अनैतिकता क्या है। लेकिन भक्तों को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्या हम समाज में रहते हैं, जब तक समाज में हैं हमें समाज के नियमों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन लिखा है गाड़ी के ऊपर तो रेड लाइट क्रॉस कर दो, अरे भाई मंदिर की गाड़ी है चलता है कि नहीं, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। इस प्रकार से कि भक्त हैं तो सब चलता है लाइक दैट। जैसे एक भक्त हमको बता रहे थे, अभी मैं आपके सामने स्थिति प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि सही है या गलत है कि नहीं, और उसके साथ हम विराम देंगे। वो भक्त गए एक जो है शोरूम के अंदर और वहाँ पे शायद उन्हें कोई MP3 प्लेयर या ऐसा कुछ खरीदना था, कुछ गैजेट खरीदना था, मतलब बाहर से आए थे वो, तो दिल्ली इसीलिए आए थे कि वो खरीद सके क्योंकि उनके वहाँ पे मिलता नहीं था। तो आए वो और हमको अगले दिन बता रहे थे, हम मिले उनसे तो कहते हैं कि देखो हम उसके पास गए और सारे गैजेट चूज़ किए तो बेस्ट गैजेट था, हमने चूज़ किया कि हमारे उपयोग के लिए कौन सा है, और फिर उसको क्या बोला कि देखो सब भगवान का है कि नहीं, हम भगवान के दास हैं, तुम्हें भगवान के इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे करके और उसने हमको दान में दे दिया, स्पॉन्सर कर दिया, हम दोनों देखो हम पैसे दे नहीं सकते कुछ ऐसा, और दान में कर दिया। अब आप बताइए सही है या गलत है। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, जैसे स्टार्टिंग इस्कॉन की बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हुई थी, दैट वॉज ऑल राइट एट दैट टाइम, हम पेट्रोल पंप पे जाए, पेट्रोल भरा और बोला भगवद गीता एज इट इज, है कि नहीं, चलेगा क्या? बताइए ठीक है गलत है। केशवल राम प्रोवर्टिव से यस वो तो जिसको नेगेटिव प्रचार करना है वो तो करता ही रहेगा, उसका जो काम ही प्रचार करना। हमें जानना चाहिए इन जनरल हमें नहीं करना चाहिए, इन जनरल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समाज इससे जो है वो अगेंस्ट होगा। लेकिन यदि कोई भक्त उस ट्रांसेंड लेवल पे है तो वो कर भी सकते हैं। और वो भक्त, उन्होंने एक सीधा से बात दिया, बोले मैंने गलत क्या किया, सीधी सी बात है, अरे भाई सब भगवान का है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के संतान हैं, तो हम भगवान के सामने इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि सब सरकार का है, बाद में इनकम टैक्स फाइल करते हो, हम वैसे इनकम टैक्स एजेंट हैं, आपसे लेने के लिए आए हैं भगवान की सेवा में। सी दैट डिवोटी हैज अ कॉन्शियसनेस सो ही कैन डू। हम जाएंगे कोई स्पॉन्सर मांगेंगे तो दो जूते मारेगा हमको, है कि नहीं? अब प्रभुपाद जी ने भी एक्चुअली ऐसे ही किया था, है कि नहीं? क्योंकि प्रभुपाद उस स्तर पर थे, कैनेडा शायद मॉन्ट्रियल टोरंटो के अंदर एक बहुत बड़े बंगलों के अंदर गए, मंदिर खरीदना था प्रभुपाद जी को, तो भक्तों ने ढूंढा, एक बहुत अच्छा घर था, और प्रभुपाद गए वहाँ, देखा इटालियन मार्बल है, गोल्डन टैप्स हैं, सब देखा। प्रभुपाद बोले यहाँ पे वहाँ डीटी रूम होगा, यहाँ पे भक्तों का निवास होगा, यहाँ डीटी किचन होगा, यहाँ बुक शॉप होगी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, यहाँ पे ये होगा। पूरा प्रभुपाद ने ऐसा मंदिर बनाई दिया एकदम से। ठीक है, बाहर आए तो जो डीलर था और ओनर था, तो उसको प्रभुपाद बोले, योर बिल्डिंग इज लाइक पैलेस, इट्स मेंट फॉर किंग्स। आपका जो ये भवन है ये बिल्कुल महल के समान है, राजाओं के लिए है। बट वॉट कैन वी डू, वी आर बेगर्स, इन हम क्या करें, हम तो भिखारी हैं। देयरफॉर यू शुड गिव इट टू अस फॉर फ्री, इसीलिए आप हमें उसे मुफ्त देना चाहिए। बस ओनर डीलर को हार्ट अटैक नहीं आया और कुछ नहीं, कमी नहीं था। बोले ऐसा बार्गेनिंग जिंदगी में सौदा नहीं किया था उन्होंने कि कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी को बोले कि फ्री में दे दो। और फिर वो डीलर बिल्कुल बौखला गया, लेकिन समा ओनर भी भगवान की योग माया शक्ति से प्रभावित हो गया और बहुत ही सस्ते दामों पे उसने जो है डील कर दिया। और प्रभुपाद जी बिना पैसे के आए थे वहाँ, अमरीश प्रभु और एक और एक माता जी थी, उनका नाम भूल गए हम, उन्होंने दोनों ने आई थिंक शायद $3,50,000 या $1,25,000 ऐसा कुछ था उस समय उसका कीमत, इट वॉज इन डेट्रॉइट। ओके, तो और उन्हें इकट्ठा करके दे दिया। और अगले दिन वो मालिक को थोड़ा झटका लगा कि मैंने तो बड़ा गलत काम कर दिया है, कुछ तो तुम्हारे स्वामी ने गलत करा दिया। तो वो आया और वहाँ से टूटिया खोल कर लेके जा रहे थे, तो भक्तों ने बोला क्या कर रहे हो? तो बोले अरे मैं बहुत बड़ा धोखा हो गया मेरे को मेरे साथ, तो कम से कुछ तो फायदा करूं मैं अपना। वो बोले अभी कृष्ण की हो गई प्रॉपर्टी, अभी जाओ यहाँ से लाइक दैट। तो और प्रभुपाद जब जाने लगे वहाँ से कनाडा से, तो प्रभुपाद बोलते हैं सी वी केम हेयर वी हैड नथिंग, मैं आया था तब मेरे पास कुछ नहीं था, अब मैं जा रहा हूँ तब भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की संपत्ति है और भगवान को हमने वापस दे दी, है ना। सो अ डिवोटी हु इज ट्रांसेंडेंटल ही कैन एक्ट ऑन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। लेकिन जो भक्त इन तीनों गुणों के परे है वो तीनों गुणों से परे कार्य कर सकता है। इसीलिए बोला गया है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञेय ना बुझाए, कि वैष्णव क्रिया मुद्रा समझ नहीं आती। लेकिन जो भक्त तीनों गुणों के प्रभाव में है वो त्रिगुणातीत होकर काम नहीं कर सकता, तो वो गलत कॉम्बिनेशन है। तो किन्हीं भक्तों कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई एक टिप्पणी उसका हम विराम देंगे। प्रश्न ग्रंथराश भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। साहब से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।
नमो।
Thank you.
Amen.